कामयाबी का ताल्लुक इंसान की बदनी ताकत से, उसके जिस्म में जितनी ताकत है उससे नहीं होता, उसके पास जितना इल्म है उससे नहीं होता। अब आप सोच रहे होंगे कि कामयाबी का ताल्लुक आखिर होता तो होता किस चीज़ से है। कामयाबी का ताल्लुक होता है कि आपके दिल में कितनी ख्वाहिश है कि आप ज़िंदगी में कामयाब हों। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा इल्म होता है, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके पास जिनका जिस्म जो है वो ताकत से भरपूर होता है, लेकिन उसके बावजूद वो जो है कामयाब नहीं हो पाते ज़िंदगी में। उसकी एक जो बहुत बड़ी वजह है वो ये है कि उनकी सोच में एक ये मसला होता है कि उन्होंने कभी ऐसी ख्वाहिश ही नहीं की होती कि वो ज़िंदगी में कामयाब हो। तो हमेशा कहते हैं कि अपनी नज़रों को आसमान पर रखें, अपने मकासद को ऊंचा रखें और हमेशा ख्वाहिश करते रहें, जोर लगाते रहें, बार बार कोशिश करते रहें कि ज़िंदगी में कामयाब हों। प्रोग्राम सुबह ज़िंदगी में बहुत बहुत खुशामदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह ज़िंदगी में तेहरान स्टूडियो से आपकी खिदमत में हाज़िर हैं, आपको खुश आमदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल खैर खैरियत से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरे साथ हसन भी मौजूद है। हसन कैसे हैं? सलाम अर्ज़ करता हूँ आपको।
अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। नाज़रीन मैं भी आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ और खुश आमदीद कहता हूँ आपको प्रोग्राम सुबह ज़िंदगी में। और ये भी मेरा नाम है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, किसी को कोई शक व शुभा हो तो वो इस पर कंफर्म कर सकते हैं।
जी बिल्कुल, बहरहाल ये हम बताते चलें कि बहरहाल वो शक व शुभा नहीं है, मैंने भी बता दिया आपका नाम।
अच्छा, हाँ, नहीं, बहरहाल यकीन हो गया।
बिल्कुल नया महीना रबीउल अव्वल का शुरू हो गया है और बहरहाल 2014 भी शुरू हो गया है। ये जो है सारी बहरहाल चीज़ें जो है मैंने कहा आपकी खिदमत में बताते चलें हम लोग। और उसके साथ साथ हमारे नए हफ्ते का नया मौजू भी शुरू हो गया और बड़ा ही अहम मौजू है, इस पर जितनी बात की जाए मेरे ख्याल में कम है। हसन मौजू जो है हमारा चलेगा बुरी आदत से छुटकारा, और उसमें सबसे पहली जो बुरी आदत हम लोगों ने इंतखाब की है वो है झूठ बोलना। तो इसके बारे में
अब नहीं है, देखिए बुरी आदत सबसे पहले तो मैं नहीं कह सकता, बाज लोगों का सबसे पहले होता है लेकिन बाज लोगों का होता है नहीं प्रायोरिटी में, या जो उसमें कहा जाता है वो थोड़ा आगे आता है दूसरे पहली चीजें
दूसरी चीजें पहले आगे।
सबसे अहम चीज ये है कि हम लोग बुरी आदतों को पहचाने,
सही
कि देखें है क्या चीज़। बाज हो सकता है हम लोग सिरे से बुरी आदत उसको माने ही मत, जो भी हो सकता है, बहुत सारे यानी ऐसे गुनाह हैं या ऐसे काम हैं जो वाकई हम लोगों को छोड़ने चाहिए। बात चीज़ें तो यानी खुलाम गुनाह या तो गुनाह कबीरा हैं, लेकिन बहरहाल हम लोग अंजाम देते हैं और फ़ख्र से अंजाम देते हैं। इसमें एक वो था कि गीबत के बारे में, काफ़ी पहले एक ड्रामा सीरियल आता था उसमें ईरानी, उसमें ये था कि गीबत जो है यानी अगर आप मुस्बत पहलू से देखना चाहें गलत बात को, गीबत जो है एक यानी इबलाग का एक रास्ता है। अच्छा। बहुत ही बेहतरीन जरिया इबलाग है, आप हिसाब लगा लीजिए जब ये फिक्र उसके पीछे होगी। वैसे वो कॉमेडी शो था लेकिन बहरहाल
ये जो बड़ी आपने बात की ना हसन, बड़ी दिलचस्प बात है। और इसमें यूं होता है कि इंसान जब कोई गलती करता है तो वो बजाय इसके कि उससे अल्लाह ताला के सामने माफ़ी मांगे और शर्मिंदा हो वो उसको, और ये चीज़ जो है बड़ी जो है चल पड़ी है कि ये आपको गलती करते हैं आप कहते हैं नहीं ये तो ठीक है, ये
इसको आजकल ठीक है, बिल्कुल एक तरह से करना चाहते हैं हम लोग के नहीं ये बिल्कुल काम हमने ठीक किया उस मौके पर, यही करना
कन्विंस कर दिया जाता है। और जैसे कि इसमें एक जो बड़ा बहुत सारे फहरिस एक मसला आता है वो आ जाता है खवातीन के हिजाब के बारे में, अक्सर जब भी बात होती है तो वो एक बड़ा अजीब सा जवाब मिलता है और वो ये मिलता है कि जी नहीं आजकल के ज़माने के साथ जो है ये सारी चीज़ें जो है क्योंकि तब्दील हो रही हैं तो ये भी तब्दील। बहरहाल उस पर जो है लिबास और हिजाब पर भी इंशाल्लाह हम बात करेंगे,
इंशाल्लाह इसको मुख्तलिफ पहलुओं से इस मौजू पर हम लोग इस हफ्ते नज़र डालेंगे। और बहरहाल कोशिश करेंगे आज ही से देख लें हम लोग की कौन सी बुरी आदतें, एक एक सिर्फ यानी हर रोज़ हम लोगों के प्रोग्राम के साथ एक एक आदतें, और मैं भी कोशिश करूंगा, मैं अपने यानी ज़ाती तौर पर मैं भी हम लोगों की भी हमारी और खुर्रम की भी यकीनन यही कोशिश होगी कि एक बुरी आदत को हर रोज़ छोड़ दें तो हफ्ते के आखिर में 7 बुरी आदतें हम लोग छोड़ चुके होंगे।
और इसके साथ साथ एक चीज़ और भी बताते चलूँगी, जैसे हसन ने कहा कि पहचानना बहुत ज़रूरी है अपनी बुरी आदत को। नफ्सियात में भी अगर आप चाहते हैं कि मैं मेडिकल साइंस से आपको रेफरेंस दूं तो नफ्सियाती बीमारियां जो होती हैं क्योंकि खुद झूठ बोलना जो है और भी बहुत सी ऐसी आदत जो हमारे पास हमारी ज़िंदगी में होती हैं इनका नफ्सियात से बहुत एक गहरा ताल्लुक होता है। और नफ्सियात में भी जो इल्म है नफ्सियात का उसमें भी ये कहा जाता है जब आपको कोई भी मसला है उसको पहचानना पहले बहुत ज़रूरी है। जब तक मरीज इस बात को नहीं मानेगा कि मुझे ये मसला है तो उसका इलाज करना बहुत बहुत सख्त हो जाता है। तो बिल्कुल ऐसा ही है कि आप लोग जो बहुत छोटी सी कोशिश है वो ये है कि हम लोग आज के दिन मिल के ये कोशिश करें कि हम ये पहचाने कि आया हम झूठ बोलते हैं नहीं बोलते तो बहुत अच्छी बात है, अगर बोलते हैं तो उसको पहचाने कहाँ कहाँ बोल रहे हैं और किस वजह से बोल रहे हैं। और उसके बाद इंशाल्लाह कल जो है हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको छोड़ने की। बहरहाल यहाँ पर हम लोग चलेंगे, एक छोटा सा वक्फा लेंगे और वक्फे में हम लोग मेरे ख्याल से करेंगे तेहरान की थोड़ी सी सैर। तो चलते हैं, तेहरान की सैर करते हैं, उसके बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, खुश आमदीद आपको कहता हूँ। थोड़े से जो है क्लिप्स आपने देखे तेहरान और जो है मुख्तलिफ जगहों के, और एक चीज़ जो बताता चलूँ वो ये है कि हम लोग दोबारा जो है कोशिश कर रहे हैं कि मुख्तलिफ शहरों के ईरान से रिपोर्ट बनाएं और वो आपकी खिदमत में पेश करें। कुछ शहरों को तो हमने आपको दिखा दिखा के जो है वो आपको याद हो गए होंगे, बहरहाल उसमें जो है तेहरान भी है, हमदान भी है और बहरहाल शहर है,
बहरहाल कई शहर दिखाएं। मेरे ख्याल में अगर हम लोग के नाज़रीन कोई भी ना आया हो वहाँ पर ले जाएं उनको, तो वो खुद
ने पता चल खासतौर पर हमदान की जो हसन ने आपने सैर करवाई है और वो जो चीज थी जिस पे आप बैठे हुए थे, जो क्या उसको रेल्स के ऊपर जो चल रहा था, बिल्कुल वो उसकी वहां तो जरूर हमारे नाजरीन जाएंगे, बिल्कुल इसमें तो कोई शक ही नहीं। बारह जनजान की भी हम सैर एक बार करवा सकते।
एक चीज वो जो मैंने वही वो चीज जो थी नाम जिसका याद नहीं आ रहा है इस वक्त फिलहाल, मुझे पूछ लूंगा मैं अपने साथियों से। वो तेहरान में भी अभी हाल में एक जगह पे खोली गई है
पहाड़ों के ऊपर,
पहाड़ों पर ही उसको बनाया जा सकता है, मसनूई तौर पर अगर बनाया जाए फिर भी मसनूई पहाड़ बनाने पड़ेंगे। वो तेहरान में भी अभी बनाए गए हाल में, मैं पिछले हफ्ते मैं देख रहा था,
सही है।
और काफ़ी दिलचस्प चीज़ है। तो इसमें घूमने घामने के लिहाज से भी ईरान हर तबके के लिए, हर सोच के रखने वाले के लिए, हर उम्र के बच्चे के लिए, बड़े के लिए ईरान जो है बेहतरीन जगह है।
और एक जो बड़ी दिलचस्प चीज़ है ईरान गर्दी में वो ये है कि आपको हर शहर में जो आप जाएंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ बड़े शहरों में या अहम शहरों में आपको ये चीज़ें मिलें, इत्तफाकन बड़ी दिलचस्प बात यह है कि आप छोटे छोटे शहर में भी जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको कुछ ऐसी चीज़ें दिखने में मिलेंगी कि आप जो है बड़े लुत्फानंदोज़ हो सकते हैं उनसे और बड़ा यार बहरहाल मज़ा आता है घूमने फिरने में। अच्छा, बात जो हमारी चल रही थी झूठ के ऊपर चल रही थी, इंशाल्लाह उस पर हम जो है बात जारी रखेंगे।
बुरी आदतों पे,
जी बुरी आदतों पे चल रही थी और उसमें ख़ास तौर पे झूठ बोलना, क्योंकि इस हफ्ते जो है हम सिर्फ झूठ पे बात करेंगे, हम कहेंगे कि जी झूठ जो है उसको छोड़ा जा सके, सच बोला जा सके। और अच्छा हसन, एक बात जो है हमेशा हम बहुत से लोग करते हैं, अलबत्त इसको दोबारा हम नाज़रीन की खिदमत में पेश करें ताकि ज़रा ताज़ा हो जाए ये बात, वो इस वजह से कर रहे हैं कि ये जो आदत है हम आसानी से छोड़ सकें। बात ये है कि कहते हैं कि एक झूठ बोलो तो 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, एक बड़ी जो है वो कह सकते हैं ये कहावत सी बन चुकी है।
हाँ बिल्कुल, कहावत के अलावा ये एक हकीकत भी है, यानी इस लिहाज से कि आप जो भी आप झूठ बोलते हैं जिससे भी बोलते हैं तो उसमें आगे फिर आपके हाथ में नहीं होता।
ठीक है,
एक बहुत ही बुजुर्ग ने बहुत ही अच्छी बात कही थी, कहा था कि झूठ आप बोलना शुरू करते हैं
ठीक
और शैतान बाकी काम संभाल लेता है।
शैतान जो है वो रिस्पांसिबिलिटी ले लेता है,
ले लेता है,
शुरू हो गया
आप जो है अब शुरू हो गया और आपको यानी जिल्लत की जो इंतहाई हद है वहां तक पहुंचाने को कोशिश वो अपनी भरपूर करता है, अब उस पर यानी मुनहसर है इंसान पर कि वो खुदा से कितना करीब हो।
अच्छा,
तो इसमें सबसे जो चीज है वो ये है कि अगर जिस मुश्किल में हम लोग फंस जाए उसमें हमारे अइमा और खुद रसूल अकरम ने भी फरमाया है कि जब भी किसी मुश्किल में, इस तरह की मुश्किल में गिरफ्तार हो जाओ तो फौरन कोशिश करो कि अपने असल की तरफ, अपने यानी हकीकत की तरफ फिर से वापस चले जाओ। इंसान की हकीकत क्या है? खुदा की तरफ
लौट जाना, सही।
तो उसकी तरफ अगर लौटने की हम लोग कोशिश कर जाएं तो बहुत सारी बुरी आदतें मिन जुमला झूठ को हम लोग छोड़ सकते।
यानी आपके कहने का मतलब ये है कि जब भी आपको कोई मसला पेश आए जिंदगी में और उसको आप हल नहीं कर पा रहे तो जो है आप अल्लाह ताला की बारगाह में चले जाएं, अल्लाह ताला से दुआ करें।
हाँ ये भी है, यानी हत्ता अगर किसी खुदा ना खासा किसी हम अपनी बात कर रहे हैं गुनाह में मुब्तला है तो हमें अगर उसकी तरफ जाना न हुआ हमारा तो यकीनन कहीं और भी गड़बड़ है और उसको भी हमें ठीक करना पड़ेगा, फिर उसकी तरफ जाना पड़ेगा। इसमें ये होता है ना कि आप गाड़ी एक चला रहे हैं उसमें कोई आपको अचानक फनी प्रॉब्लम की वजह से गाड़ी रुक गई,
ठीक है,
आपने चेक किया पेट्रोल ठीक है, बज़ाहिर बाकी जो कह सकते हैं सस्पेंशन सिस्टम भी ठीक है, हर चीज़ बिल्कुल ठीक है
जी,
देखा कि इंजन काम नहीं कर रहे,
ठीक है,
इंजन काम न करना तो खुद ये है कि यानी बुरी चीज़ है यकीनन, लेकिन जो असल चीज़ है वो ये है कि जो इंजन काम नहीं कर रहा यकीनन किसी और चीज़ की वजह, कहीं प्रॉब्लम है कि आपके इंजेक्टर में प्रॉब्लम है, कार्बोरेटर में प्रॉब्लम है, कहीं सिलेंडर्स में प्रॉब्लम हो सकती है, तो हम लोगों को जाके ये पता लगाना, एक ज़ाहिरी प्रॉब्लम हो गई और एक उसकी असली हकीकत हो गई।
हाँ, जो पीछे से असल में जो बिल्कुल हाँ, ये बड़ी अच्छी आपने बात की हसन, और इसी को पकड़ना जो है मेरे ख्याल में जो शख्स इसको पकड़ने के काबिल हो तो वो अपनी आदत भी जो है बहरहाल छोड़ सकता है किसी न किसी तरह। बहरहाल इस पर ज़रूर हम बात करेंगे, आप लोग भी हमारे साथ शामिल हों, आप लोग भी हमें बताएं कि क्यों ऐसा होता है कि इंसान जो है क्या क्या कुछ लोग तो खैर हसन, दो मैंने जो दो तरह के देखे हैं हालात, जिसमें एक ये होता है कि कुछ लोग मजबूरी के तहत झूठ बोलते हैं, कुछ लोगों को कुछ थोड़ा सा वो शौक भी होता है कि जी नहीं, अब मसल मिसाल के तौर पे अभी किसी से पूछने की भाई आपके नंबर कितने आए मैट्रिक में, नंबर आए हैं 600, 650 बोलने हैं, 50 ऊपर ज़रूर आएगा, वो पहली क्लास से लेके जो मैट्रिक की क्लास FSC तक वो 50 ऊपर वैसे ही आ जाता है।
हाँ
तो
बिल्कुल,
ये जो है थोड़ा, अलबत्त इससे कोई फ़र्क नहीं, मेरे ख्याल में कोई फ़र्क नहीं होगा कि अगर आप 600 बोलें या 650 बोलें, थोड़ा सा बहरहाल इस पर भी इंशाल्लाह बात करेंगे। यहाँ एक बड़ी अच्छी चीज़ हसन लिखी हुई है, वो ये लिखी हुई है कि अगर आप सच बोलें तो फिर आपको किसी चीज़ को याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है। बड़ी
बिल्कुल
ज़बरदस्त बात, क्योंकि जो आप झूठ बोलते हैं तो आपको ये याद रखने की जरूरत होती है कि मैंने हसन को क्या क्या बताया था, मैंने उस शख्स को क्या बताया, क्योंकि जारी बात है आप झूठ बोल रहे हैं तो ये
उसमें
जो
ये था कि जब इंसान जो है झूठ बोलता है, यानी ये एक साइकोलॉजिकल भी यानी नुक्ते नज़र से बहुत ही ज़्यादा अहम है, वो ये है कि इंसान जब झूठ बोलता है तो उसका क्या हो जाता है कि एक सेल जो है वो सही तौर से काम नहीं है, यानी उसका फंक्शन जो है, जो असल उसको
अच्छा
काम करना चाहिए वो मुनासिब तरीके से काम नहीं
नहीं
करता,
कर,
और वो जो उसको मुख्तलिफ जो इलेक्ट्रिकल ख़ास किस्म के शॉक्स जो लगते हैं
बिल्कुल
ताकि वो सही
गुजर
तौर
रहे
से
होते हैं
काम
शॉक्स,
करे, वहाँ पर वो शॉक नहीं आता।
सही
तो आप हिसाब लगाइए कि मिसाल के तौर पर आपने जो चीज़ सोची है
जी,
झूठ के तहत खुदा न खास्ता, वहाँ पर जाके उसका ज़खीरा हो गया है,
हाँ
तो वो अब आपको अगली दफ़ा याद नहीं
नहीं है
आएगा।
बिल्कुल। कहते हैं कि जो लोग ज़्यादा झूठ बोलते हैं उनके जो है अल्जाइमर होने के उनके अंदर चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो उनको पता नहीं चल रहा होता कि भाई किसको हमने क्या बोला, जैसे कहते हैं ना उन्हें ये नहीं पता चल रहा होता कि किसको मैंने अपनी जो है डेट ऑफ बर्थ जो है किसको क्या बताई है किसको क्या बताई है,
हाँ,
तो
इसमें
वो
ये
सारी
काफ़ी हसास
लीक
मसला आपने
बिल्कुल
छेड़ा है
बिल्कुल
वैसे।
बड़ा खतरनाक किस्म का
हाँ,
मसला है।
बहुत ही
अच्छा यहाँ
खतरनाक।
एक और बात बड़ी दिलचस्प पसंद लिखी हुई है, और वो ये लिखी हुई है कि लिखा इस तरह बयान किया गया है कि मैं परेशान इसलिए नहीं हूं कि तुमने मेरे से झूठ बोला है, मैं परेशान इसलिए हूं, मैं नाराज इसलिए हूं कि अब के बाद मैं तुम्हारे पे
भरोसा
एतबार
नहीं
नहीं
कर
कर सकता,
सकता।
भरोसा नहीं कर सकता। ये भी जो है बड़ी दिलचस्प बात है, और अगर ये सोच लिया जाए झूठ बोलने से पहले कि अगर जो आपके सामने शख्स खड़ा है उसे ये पता चल जाए कि आप उसे झूठ बोल रहे हैं, तो आपकी जो उसके साथ दोस्ती है या आपका जो उसके साथ राबता है वो तकरीबन ख़त्म हो जाएगा।
बिल्कुल मुनक़ता हो जाता है इंसान का, और बहुत सारी चीज़ें। एक तो एक चीज़ यानी हम लोग को हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि बिलफर्ज़ अगर खुदा न खासा अगर कोई हम लोग यानी झूठ की आदत में मुब्तला हो गए हैं, तो उसमें सबसे बड़ा नुकसान हम लोग खुद ही को पहुंचा रहे हैं कि दूसरे जो हैं हम पर बिल्कुल भरोसा करना छोड़ देंगे। खुर्रम ने बहुत अच्छी बात कही यार। लेकिन खुर्रम जो चीज़ होती है वो ये है कि आम हालात में हम लोग एक झूठ बोल देते हैं, कहते हैं यार ठीक कर लूँगा इसे, लेकिन
जी
वो चीज़ फिर बढ़ती जाती है, वही मसला कि शैतान उसको संभाल लेता है, और
बिल्कुल
उसमें
सही
होता ही है कि हम लोग काफ़ी फिर उसके बाद मुश्किलात में मुब्तला हो जाते हैं कि उसको संभालने के लिए, यानी एक जो है संभालना होता है कि इंसान जो चीज़ें उसके अतराफ में मुश्किलात हैं उसको संभाले, उसके लिए ख़ास किस्म की एनर्जी चाहिए होती
सही
है,
है
खुदा दे देता है उसको जो
बिल्कुल
भी जिस पोजीशन में। लेकिन जब ऐसी कोई मुश्किल आती है तो यकीनन खुदा जो है अपने हाल पे हम लोगों को छोड़ देता है,
सही
इससे बहुत हम लोगों को खौफ
खौफ करना
करना
बिल्कुल
चाहिए।
जी
बिल्कुल
जी इसे यही कहते हैं ना कि जब आपके साथ आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात आ रही हैं या आपके सामने इम्तिहान आ रहे हैं, तो इसका मतलब यही है कि अल्लाह ताला के जो लिस्ट है उसमें आपका नाम मौजूद है, और वो बिल्कुल ऐसा ही है जब एक बच्चा को गलती करता है तो माँ बाप उसकी थोड़ी बहुत डांट डपट करते हैं, उसको समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब बच्चे बिल्कुल हाथ से निकल जाते हैं तो फिर माँ बाप भी कुछ नहीं कहते, बिल्कुल ऐसा
बिल्कुल
ही रब्ता है अल्लाह ताला का। एक और असल चीज़ बड़ी दिलचस्प मिली, और वो ये मिली है कि कहते हैं कि आप हर किसी के साथ झूठ बोल सकते हैं, लेकिन आप अपने आप से कैसे झूठ बोलेंगे, अपने आप को कैसे समझाएंगे कि अगर मैंने किसी को ये बोला है कि जी मेरे नंबर 600 नहीं आए 700 आए, तो आप अपने आप से कैसे अपने आप को छुपा रहे हैं, ये जो है
हाँ,
ये इस चीज़ का भी थोड़ा सा यह है बारा ख्याल रखना
ये
इस।
ऐसा मसला है वैसे खुर्रम के, इस पर यानी कई पहलुओं से बात होनी चाहिए। एक तो हम लोगों का हो गया मजहबी पहलू, और ये आपस में सारे मुत्तसिल हैं एक दूसरे से। एक है इसका साइकोलॉजिकल पहलू,
जी
इसके असरात क्या हम लोगों पे, जहनीयत पर हम लोगों के पड़ सकते हैं,
बिल्कुल
और हत्ता हम लोगों के यानी यकीनन जिस्मानी कैफियत पर भी असर डालेगा, डालेगी ये चीज़।
जी
और इसमें हम लोगों को बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि यानी किस पहलू से अगर हम लोग इस मसले को वो कर रहे हैं, इंशाल्लाह
देख रहे
इसी
हैं
मसले को इस हफ्ते लेकर हम लोग
बिल्कुल
चलेंगे झूठ के मसले को, बहुत ही
जी
बड़ी मुश्किल है, हम कह
मुश्किल
सकते हैं अच्छे
बिल्कुल
खासे हम लोगों के जो आजकल मुश्किल हैं ना माशरे
जी
में,
वो
वो इसी की वजह
बिल्कुल,
से है।
क्योंकि हसन आइमा कराम ने भी कहा है कि छोटे गुनाह जो हैं वो बड़े गुनाहों का बाइस बनते हैं,
यकीन
और इसमें हकीकत है। आप छोटी छोटी चीज़ों से शुरू करते हैं और जो है फिर हम बड़ी बड़ी गलतियों में और बड़े बड़े गुनाहों में बहरहाल फंस जाते हैं। एक छोटी सी बात करूंगा और उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे वक्फे की तरफ। और यह लिखा गया है कि बेहतर ये है कि आप लोग झूठ बोलें, आप लोग कुछ ना बोलें। अगर आपके पास कुछ बोलने का नहीं है या आपके पास कोई बहाना नहीं है तो बेहतर है कि खामोशी इख्तियार कर लीजिए, इसके बजाय इसके कि आप जो है ये बोलें कि ये हो गया और फलां हो गया और ये मसला पेश आ गया, इस वजह से मैं जो है देर हो गई, मुझे नहीं आ सके। ये बहरहाल इसके भी पर इंशाल्लाह जो है बात करेंगे। यहाँ पर हमने वक्फा लेना, और वक्फे में देखेंगे कि कैसे आप लोग हमारे से राबता कर सकते हैं, कैसे आप लोग प्रोग्राम में हमारे शामिल हो सकते हैं। सुबह सवेरे लाइव फेसबुक मेरे पास यहाँ खुली हुई है, बाकी जो रस्ते हैं वो आपको इस ब्रेक में हम लोग आपको दिखाएंगे। जी नाज़रीन, तहरान से लाई गई कुछ खूबसूरत तस्वीर हमने आपकी खिदमत में पेश की, उम्मीद है कि जो है बहरहाल आपको पसंद आएंगी, बहुत
खुर्रम,
खूबसूरत
एक चीज़
तस्वीर।
होती है
जी
वो बहुत ही ज़बरदस्त यही तस्वीर थी, उसमें ये होता है कि वाकई खूबसूरत शहर है तेहरान, घूमना तो
बिल्कुल
यानी हर एक के लिए मेरे ख्याल में वाजिब है।
बिल्कुल
और बहुत सारे लोगों के जो तसव्वुर होगा इस शहर के बारे में मुख्तलिफ लोगों का, इन तस्वीर को देखकर काफ़ी यकीनन तब्दील हो
तब्दील होगा
जाएगा।
बिल्कुल
एक तकरीबन कह सकते हैं 600 किलोमीटर का यानी एक्सप्रेस वेज का नेटवर्क सिर्फ
बिल्कुल
तेहरान शहर में, बहरहाल और जो मुख्तलिफ सहूलियात हैं कि आप शहर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक बग़ैर रेड लाइट के आप जा सकते
बिल्कुल
हैं। ये लेकिन एक जो अहम चीज़ है और इसमें भी दिखाई गई, मुख्तलिफ तारीखी या घूमने घामने की इमारतें, जो तफरीही इमारतें होती हैं
म्यूजियम्स हो गए, इसमें बहुत सी और भी चीज़ें
बहुत ज़्यादा है।
बिल्कुल
खुद तेहरान को म्यूज़ियम्स, आप जिस यानी वेबसाइट में आप जाइए तो एक चीज़ की तरफ इशारा हुआ होगा उसमें
सही
यकीनन, वो ये कि तेहरान म्यूज़ियम्स का शहर है। मुख्तलिफ किस्म के यानी हर किस्म का आप सोच सकते हैं वो उसमें म्यूज़ियम्स मौजूद हैं, और बहुत ही
और
दिलचस्प।
म्यूजियम्स भी
एक 2 साल गुजर गए कितने हम लोग जो
जी,
गए
हम
थे
लोग
वहाँ पे,
म्यूजियम
वो
गए थे, बड़ा
घड़ियों
बार
वाले
मज़ा आता
म्यूज़ियम
था।
और
और
गाड़ियों के
दूसरी बात यह कि म्यूजियम्स, शायद म्यूजियम का लफ्ज़ जब लिया जाता है तो लोग समझते हैं कि बोरिंग सी जगह है।
हाँ
नहीं, म्यूजियम्स क्योंकि आप जब जाएंगे तो आपको पता चलेगा कैसे दिलचस्प म्यूजियम है। यानी हम गाड़ियों के म्यूजियम में गए थे और वहाँ पर जो है पुरानी से पुरानी जो गाड़ी यहाँ पर ईरान में थी वहाँ से लेके जो है बारह मुख्तलिफ गाड़ियाँ जो हैं देखने में मिली। फिर जो है
ये
वो
हर तबके के लोग
बिल्कुल
नौजवानों के लिए भी
यही
बहुत
बात
अहम
मैं
है।
कहना चाह रहा हूँ
ये
बिल्कुल
यहाँ का जो कह सकते हैं कि जो मूज़े जवाहरात मिल्ली उसको कहते हैं यानी नेशनल ज्वेलरी म्यूज़ियम
ठीक
जो यहाँ का है, तो उसमें जो है जो ये असली ईरान का ख़जाना है उसी के बिल्डिंग में मौजूद है। वो कहा जाता है कि हत्ता जो बरतानिया में मौजूद है उससे बेहतर है। उसकी वजह
अच्छा
ये है कि जो कलेक्शन कलेक्शन इसमें है वो कहीं पर भी नहीं है दुनिया में।
सही
तो ये हो गई एक चीज़ खुर्रम। दूसरा हम लोगों का सबसे बड़ा यानी मैं कह सकता हूँ कि खुद शायद ईरानी, या मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि इनमें से बहुत सारे म्यूजियम्स में मैं जा ही नहीं सका हूँ,
सही
वजह क्या है
जी
आपके ख्याल में?
पता नहीं।
काहली, और कुछ नहीं
हाँ
होता है इसके अलावा।
बिल्कुल ये तो है,
इसमें ये होता है कि
इसमें
इंसान कहता है चले जाएंगे अपने ही शहर में तो है, लेकिन एक सबसे बड़ी और बुरी चीज़ होती है जब कोई मेहमान आ जाता है उसको हम लेके जाते हैं फलां जगह
फिर पता
घूमने,
चलता है
फिर
कि
पता चलता है ऐसी कोई चीज़
ऐसे ही
थी।
बिल्कुल ऐसे ही
इसमें ये होता है कि अपने शहर में बहुत सारे, मिसाल के तौर पर कराची
जी
में वहाँ पर जो कई म्यूज़ियम्स हैं
जी
उनमें से एक जो मुझे पसंद आया, मैं जा नहीं सका बहरहाल
जी
मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर, लेकिन जो जगह थी वो था कायद अजम मोहम्मद अली जिन्ना की का जो घर था
हाँ
वहाँ
हाँ
पर,
घर जो है सही
तो उसमें उसको म्यूज़ियम में तब्दील कर दिया
ठीक
गया
है
आज से चंद साल पहले। और उसमें जो है यानी लोगों को जाना चाहिए, जिससे भी मैंने पूछा वो नहीं गया था
नहीं गया
वहाँ पर,
बिल्कुल, जो खास तौर पे जो वहाँ रहने वाले लोग होते हैं वो तो बिल्कुल नहीं गए होते,
बिल्कुल
वो
नहीं गए होते।
जो
और
बाहर
बाहर से
से
आने वाले भी,
बिल्कुल
या बहरहाल मुख्तलिफ शहरों में, ये चीज़ है
जी
यानी हिंदुस्तान के भी
ऐसे ही
पाकिस्तान के भी, लोग जो हैं वो अपने यानी जो उनके पीछे जो गुज़रा होता है, उनकी तारीख़ होती है, उनकी
जी
सकाफ़त होती है, उसके बारे में पता नहीं क्यों जानना नहीं चाहते।
बिल्कुल
इसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी जो कुछ आपके शहर में, एक बार आप इरादा करें कि इस जुमे को जाना है, एक आप अपने लिए टारगेट बना लें, एक अपने लिए मकसद बना लीजिए कि इस हफ्ते जाके हमें घूमना है। अब जुमा जब हो जाता है, या मिसाल के तौर पर यानी वीकेंड, हफ्ते के आखिर के जो दिन होता है उसमें ये होता है कि चलो आज थोड़ी देर तक मैं सो लूँ, आज 11 बजे
बिल्कुल
तक सो लूँ,
ऐसे
मैं 2-3 दिन से मैं सोया नहीं था, फिर कहीं नहीं जाता इंसान।
अच्छा यही जो मसला हसन आपने उठाया है, इस मसले पे भी एक प्रोग्राम हमें रखना पड़ेगा क्योंकि ये बड़ा ही अहम मसला है। जब छुट्टी का दिन होता है उस दिन हम लोग कहते हैं कि चलो रेस्ट कर लें, उसके अलावा के जो दिन है उसमें टाइम नहीं होता,
बिल्कुल
तो फिर जिंदगी तो फिर सिर्फ होगी वही काम और तो कुछ रह ही नहीं गया। मेरे खास साथ खुद जो है मैं अक्सर ही इस मसले का सामना करता रहता हूँ, वो यही होता है कि जिस दिन छुट्टी है उस दिन जो है वही थोड़ा ज़्यादा सो लिया, थोड़ा रेस्ट कर लिया कि जी हफ्ते में थक गया था, थोड़ा सा जो है आज के दिन जो है थोड़ा सा रेस्ट कर लें और थोड़े से जो है थकावट निकाल लें, और वो दिन गुजर जाता है, तो फिर जो है कब जाया जाए, ये एक बड़ा जो है बड़ा
एक चीज मैं बताना चाह रहा था, बहुत सारे लोग जो ईरान आते हैं वो ज़ियारतों के लिए आते हैं,
इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है कि ये कहाँ की तस्वीर है, लेकिन
अब लाए कैसे फिर आइडिया अगर
जी
नहीं।
मैं जो जितनी मुझे तस्वीरें मिली नए साल की जो आतिशबाजी थी उसके जो है मैं हमारा लेके आ गया तस्वीरें।
आतिशबाजी का सिलसिला कह सकते हैं शायद ये कदीम तरीन जो एक फ़न है,
जी
करीब 800 साल पहले चीनियों ने इसे शुरू किया। यानी ये नहीं है कि आजकल चीनी जो है सस्ती चीज़ें दे रहे हैं, बल्कि उस ज़माने से ही सस्ती चीज़ें दे रहे हैं,
सही
जब
है
से कागज़ का ईजाद उन्हीं के यहाँ से हुआ था, प्रिंटिंग
अच्छा
का सबसे पहले सिलसिला जो है
वहीं
टेलीफोनी
से
जो
शुरू,
छपाई जो होती है
ठीक
वो चीन से शुरू हुई थी। इसके अलावा खुद आतिशबाजी का सिलसिला वहाँ से शुरू हुआ था,
अच्छा
खुद बंदूकों का कहा जाता है पहली बंदूक जो है उसका क्रेडिट मगरबी ममालिक ने ले लिया,
जी
लेकिन खुद
चीन से
बंदूक जो थी और उसका पूरा सिस्टम जो होता है ये चीन
अच्छा।
से ही आया
अरे
है।
तभी ये पटाखे जितने भी हैं जहीं कहीं भी मिलते हैं आपको, ईरान हो पाकिस्तान हो हिंदुस्तान हो, उनके ऊपर कहीं ना कहीं वो चीनी लिखी हुई
नहीं,
होती
उसके
है
अलावा खुद उसकी शक्ल ही चीनी होती है, पतली पतली धारें उसमें से निकली होती हैं, वो
बिल्कुल
उसमें शक्ल ही उसकी
जी।
चीनी हो जाती है काफ़ी।
बहरहाल ये जो तस्वीर थी हसन, ये तो खैर दुबई की तस्वीर है, और कहा जाता है कि हसन आपने सुना होगा कि कहते हैं कि इस साल जो है दुबई ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है पूरी दुनिया में, और इतनी जो है आतिशबाजी की है दुबई के अंदर।
बहरहाल
बहरहाल जो है ये रशिया की तस्वीर है, और बहरहाल ये भी खूबसूरत
इसमें
तस्वीर
वही वो
थी।
आ जाता है घूम घाम के खुर्रम के आदमी ने कितनी जगह देखी हैं
सही
और कितना घूमना पसंद करता है।
बिल्कुल ये
जैसा कि
बहुत
मैंने कहा कि बहुत सारे आजकल यानी एक तर्ज़ घूमना यूँ कहें है, वो ये है कि बैकपैकर्स उन्हें कहा जाता है। कि
ठीक है
बिल्कुल एक बार अगर आपको याद हो, एक साल पहले हम लोगों ने बुलाया भी था कुछ अरसे के लिए, वो लोग आ रहे थे इस प्रोग्राम में, मियाँ बीवी जो दुनिया भर घूमे हुए
जी
थे
घूमे
एक
थे
साइकिल के साथ, और
बिल्कुल
ये भी नहीं था कि कोई बहुत ज़्यादा अमीर रहे हों,
बिल्कुल सही
बल्कि
बात की
उन जो चीज़ उन्होंने कही थी उन्होंने कहा था $1,000 हम लोगों के पास कुल थे, और उससे $1,000 से वो दुनिया भर घूमे हैं। ये नहीं कि बिल्कुल ही फाके किए हों, बल्कि एक मुनासिब तरीके से। यानी ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इंसान जो है वो बिल्कुल या 5-स्टार होटलों में ठहरे या सिरे से जाए मत, बल्कि इस लिहाज से बहुत ज़्यादा अहम है खुर्रम के आदमी सही तौर से देखे, और उसकी आप यकीन रखिए कि उसकी ज़हनियत काफ़ी हद तक खुल जाती है घूमने से, चाहे वो अपने शहर में क्यों ना हो, चाहे वो ऐसी इमारतों में क्यों ना हो कि उसके शहर के करीब है। बाज़ लोगों का ये होता है कि बस आके एक इमारत के साथ खड़े हो जाते हैं और एक तस्वीर ले लेते हैं,
ठीक है
घूमने में भी खुद उसकी नज़ाकतें होती हैं, वो बहुत ज़्यादा ख्याल रखना
ख्याल
होता
रखनी
है उसका।
चाहिए बिल्कुल। बहरहाल और ये जो हसन आपको तस्वीर नज़र आ रही है मेरे ख्याल से लंदन की है, क्योंकि ये जो बहरहाल झूला आपको नज़र आ रहा है जिसको लंदन आई का नाम भी दिया
हाँ
जाता है, ये भी यहाँ दिखने में नज़र आ रहा है हमें,
हाँ
और
कोशिश
इसके
करिए।
अलावा जी ये भी लंदन ही की तस्वीर है।
आतिशबाजी होती बड़ी ज़बरदस्त है,
अच्छा
आप
बहरहाल ये मेरे
कोशिश
ख्याल से
करिए, आप
तस्वीरें जो है मेरे
कामयाब
पास
यकीनन हो जाएंगे मुझे
जी,
मालूम
जैसे तस्वीरें जो है हमारी ख़त्म हो गई हैं, चलते हैं कि यहाँ पर छोटा सा वक्फा लेते हैं, और इस वक्फे में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे आप लोग हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में बड़े जो शहर हैं वहाँ पर रश बढ़ता जा रहा है, बड़े बड़े जो मसलन जो ऐसे मुल्क हैं जिनके अंदर बिजनेस वगैरह जो है इस तरह की चीज़ें ज़्यादा होती हैं, तो वहाँ पर जो है जारी बात है बड़ी सिटीज़ जो हैं वहाँ पर आपको देखने मिलेगा कि बड़े बड़े जो है बिल्डिंग्स बना दी गए हैं, बड़े बड़े अपार्टमेंट्स बनते जा रहे हैं, और ऊंची से ऊंची तरीन इमारतें जो हैं खड़ी की जा रही हैं। हाँ एक चीन की एक बड़ी दिलचस्प बात हसन जो है वो सुनने में मिली, और वो ये है कि कहा जाता है कि चीन ने ये कहा है कि हर साल जो है 2020 तक उन्होंने कहा है कि वो हर साल एक नया शहर बनाएंगे। अब ये बड़ी दिलचस्प बात है, और इसमें एक जो चीज़ सेटेलाइट के ज़रिए जो दिखने में मिली वो ये तस्वीर आप यहाँ पर देख रहे हैं, और हसन बड़ी दिलचस्प बात है, कहा जाता है कि जो चीन के मुख्तलिफ शहर हैं वो बहुत ज़्यादा उनकी जो है वहाँ पर जो आबादी बहुत ज़्यादा होती जा रही है, लेकिन उसके बावजूद चीन ने एक ऐसा शहर चेंगोंग के पास बनाया है जिसको अगर आप सेटेलाइट के ज़रिए देखेंगे तो उस शहर में आपको ढेरों के करीब बिल्डिंग्स और सारी चीज़ें नजर आएंगी, लेकिन उसमें एक शख्स भी आपको नज़र नहीं आएगा, जैसे कि आप तस्वीर देख रहे हैं। ये मेरे लिए बड़ा बहुत दिलचस्प बात थी, और इसमें जब चीन की जो हुकूमत है उससे पूछा गया तो उसमें भी यही उन्होंने कहा है कि हम जो है इस तरह के बहुत से और भी शहर हैं जो चीन बना रहा है, और बारह इसकी वजूहत क्या हैं उसके बारे में हम नहीं बता सकते, लेकिन जो है बारह ये तस्वीर चेंगोंग के पास जो एक
तो
शहर है
खुर्रम
वहां
इसमें
से
एक चीज़ है,
जी
नुक्ता इसका ये कि
जी
उसमें देखिए कितनी अरब 1,200,000,000 आबादी है,
जी जी
एक
बिल्कुल
अरब से कहीं ज़्यादा,
बिल्कुल
और उसमें एक हर एक को एक ईंट पकड़ा दें जाकर रख आए सिर्फ, तो एक शहर बन ही जाएगा यकीनन।
बिल्कुल सही कहा आपने, कहा
हाँ,
बिल्कुल ऐसा
उसने
ही
जो
है।
यही काम किया होगा मेरे ख्याल में,
बिल्कुल
एक एक जाके ईंट रखा हो बस।
जी बिल्कुल। बहरहाल हसन, हमें यहाँ पर एक छोटा सा लेना है वक्फा, वक्फा लेंगे और उसके बाद आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में बड़ी जो बड़े जो शहर हैं वहाँ पर रश बढ़ता जा रहा है। बड़े बड़े जो मसलन जो जो ऐसे मुल्क हैं जिनके अंदर बिजनेस वगैरह जो है इस तरह की चीज़ें ज़्यादा होती हैं, तो वहाँ पर जो है जारी बात है बड़ी सिटीज़ जो हैं वहाँ पर आपको देखने मिलेगा कि बड़े बड़े जो है बिल्डिंग्स बना दी गई हैं, बड़े बड़े अपार्टमेंट्स बनते जा रहे हैं और ऊंची से ऊंची तरीन इमारतें जो हैं खड़ी की जा रही हैं। हाँ, एक चीन की एक बड़ी दिलचस्प बात हसन जो है वो सुनने में मिली, और वो ये है कि कहा जाता है कि चीन ने ये कहा है कि हर साल जो है 2020 तक उन्होंने कहा है कि वो हर साल एक नया शहर बनाएंगे। अब ये बड़ी दिलचस्प बात है, और इसमें एक जो चीज़ सेटेलाइट के ज़रिए जो दिखने में मिली वो ये तस्वीर आप यहाँ पर देख रहे हैं। और हसन बड़ी दिलचस्प बात है, कहा जाता है कि जो चीन के मुख्तलिफ शहर हैं वो बहुत ज़्यादा उनकी जो है वहाँ पर जो है आबादी बहुत ज़्यादा होती जा रही है, लेकिन उसके बावजूद चीन ने एक ऐसा शहर चेंगोंग के पास बनाया है जिसको अगर आप सेटेलाइट के ज़रिए देखेंगे तो उस शहर में आपको ढेरों के करीब बिल्डिंग्स और सारी चीज़ें नजर आएंगी, लेकिन उसमें एक शख्स भी आपको नजर नहीं आएगा, जैसे कि आप तस्वीर देख रहे हैं। ये मेरे लिए बड़ा बहुत दिलचस्प बात थी। और इसमें जब चीन की जो हुकूमत है उससे पूछा गया तो उसमें भी यही उन्होंने कहा है कि हम जो है इस तरह के बहुत से और भी शहर हैं जो चीन बना रहा है, और बारह इसकी वजूहत क्या हैं उसके बारे में हम नहीं बता सकते, लेकिन जो है बारह ये तस्वीर चेंगोंग के पास जो एक
तो
शहर है
खुर्रम,
वहां
इसमें
से।
एक चीज़
जी
है,
जी
नुकता इसका ये है
जी
कि उसमें देखिए कितनी अरब, 1.2 बिलियन आबादी है,
जी जी
एक
बिल्कुल
अरब से कहीं ज़्यादा,
बिल्कुल
और उसमें एक है हर एक को एक ईंट पकड़ा दें जाकर रख आए सिर्फ, तो एक शहर बन ही जाएगा यकीनन।
बिल्कुल सही कहा आपने, कहा
हाँ,
बिल्कुल ऐसा
उसने
ही
जो
है।
यही काम किया होगा मेरे ख्याल में,
बिल्कुल
एक एक जाके ईंट रखा हो बस।
जी बिल्कुल। बहरहाल हसन, हमें यहाँ पर एक छोटा सा लेना है वक्फा, वक्फा लेंगे और उसके बाद आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, खुशामदीद कहता हूँ आपको प्रोग्राम सुबह ज़िंदगी में एक बार फिर, और हमारे प्रोग्राम के मेहमान अतर जैदी साहब हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। हम लोग चलेंगे हसन की तरफ ताकि हसन गुफ्तगू के सेगमेंट को शुरू कर सकें। जी हसन
बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम जी, हम लोग काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे जनाब जैदी साहब का, और डॉक्टर अतहर हुसैन जैदी साहब, मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ एक तो प्रोग्राम में, और एक तो मैं नाज़रीन को अपने ये बताता चलूँ कि हमारे अतहर जैदी साहब एक तो ख़ुद अदीब हैं, उर्दू के सिलसिले में काफ़ी उनकी पढ़ाई भी रही है, और इसके अलावा बहुत ही अच्छे अशआर का भी हमेशा इंतखाब करते हैं। और एक और चीज़ जो है इनकी सबसे अहम है, जिसके बारे में इंशाल्लाह तर्ज ज़िंदगी के हवाले से हम लोग गुफ्तगू करते हैं आपसे सनीचर के दिन, शंबे के दिन, हफ्ते के दिन, वो रहता है यानी ख़ुद तर्ज ज़िंदगी का मौजू। तो इसमें हम लोग ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि ऐसे मसाइल को छेड़ें जो वाकई हम लोग के माशरे की ज़रूरत होती है, और उसको समझना बहुत ज़्यादा अहम होता है। उनमें से एक बहुत ही अहम चीज़ है इक्तिसाद। तो हमारे अतहर जैदी साहब जो हैं वो माहिर इक्तिसादियात भी हैं और बिज़नेस फाइनेंस में, बहरहाल उनकी असल फील्ड है और चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ और सलाम अर्ज़ करता हूँ
जनाब,
आपकी खिदमत
शुक्रिया
में।
बहुत बहुत, आप ने हमें दावत दी और आपसे और आपके सामीन से मुखातिब होने का मौका दिया। तो इक्तिसाद की जहाँ तक आप बात करते हैं, इक्तिसाद तो लोगों का अकली मजहब है आजकल,
जी
और जहाँ तक आप हाउस होल्ड इकोनॉमिक्स की बात करते हैं उसमें तो अहम बात यही है कि भाई एवरीबॉडी शुड कट हिज क्लोथ अकॉर्डिंग टू हिज साइज़। तो लोगों को अपने हिसाब से ज़िंदगी गुजारनी चाहिए,
अपने चादर के
जिस
हिसाब
तरह
से
हाँ
पैर।
चादर के हिसाब से पैर फैलाने चाहिए, जिस तरह उर्दू में कहते हैं जितनी बड़ी चादर हो उतने पैर फैलाएं आप।
जी
तो लेकिन वेस्टर्न इकोनॉमी में ये हो रहा है कि जनाब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में लोग मल्टीप्लाई करे जा रहे हैं एक्टिविटीज़, और उसकी कोई बेसिस नहीं होती, बाद में वो बबल जो है वो फूट जाता है। तो और इस तरह हमारे मुल्क इस्लामी जमहूरिया ईरान में भी लोग बहुत सारे लोग ये जो चेक इशू कर देते हैं और बाद में पता चला वो चेक डिसऑनर नहीं होते, कोर्ट के पास टाइम नहीं होता कि उन चेक के केसेस डील किए जाएं। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि आपके तमाम सामीन से जो मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, आपका ये प्रोग्राम बड़े दिलचस्पी से देखते हैं, कि भाई जो भी कुछ है अपने घर के हिसाब किताब अपने इकोनॉमिक्स के हिसाब से आप करें, और अपनी एक्टिविटीज़ जो है वो कर्ज़ देना तो सवाब है, लेकिन कर्ज़ लेना हर एक से मांग लेना ये कोई सवाब की बात नहीं है,
यकीन
तो इसको अवॉइड करना चाहिए। तो और हाउस होल्ड इकोनॉमिक्स में यही है कि ख्वातीन जो हैं उनको भी अपना हिसाब किताब बजट वजट बनाना चाहिए, बजट बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, और मैंने तो ये भी कहीं पढ़ा है या सुना है कि अगर ख्वातीन कंजूस हों तो वो तो एक खूबी में आता है, लेकिन अगर मर्द कंजूस हो तो वो एक डिस्क्वालिफिकेशन है।
अच्छा अथर साहब, यही मैं इंशाल्लाह, ये जो आपने नुक्ता कहा कि कर्ज देना सवाब होता है लेकिन लेना जो है जहाँ तक मैंने पढ़ा था मुबाह होता है, यानी मेरा ये है कि हराम नहीं है लेकिन बस जायज़ है,
हाँ जायज़ नहीं है
और
लेकिन
इस
अवॉइड करना चाहिए, ये
अवॉइड
नहीं कि
करना
आप
चाहिए इसकी
बहुत
मेरा
ही एक्सट्रीम ज़रूरियात की सिचुएशन में, एक्सट्रीम नेसेसिटी की सिचुएशन में, यानी किसी से हेल्प लेना ये तो कोई बुरी बात नहीं है।
जी
मशवरा लेना तो बहुत अच्छी बात है,
जी
यानी आप मशवरा कर सकते हैं अपने कैरियर के हिसाब से, अपनी इक्तसादियात के हिसाब से, अपने मसाइल अगर आप कर रहे हैं, जिस तरह वेस्ट में लोग ऐसे भी एक एक्सपर्ट होते हैं, ऐसे भी अकाउंटेंट होते हैं जो कि हाउस होल्ड अफेयर्स में गाइड करते हैं,
जी
हाउसिंग फाइनेंस है फला है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन कर्ज़ जो है वो एक्सट्रीम नेसेसिटी में लेना चाहिए। वैसे आप हर ज़रूरतमंद को कर्ज़ दें, इसमें आपको सवाब मिलेगा।
अच्छा, ये जो मुख्तार हम लोगों का जो बैंकिंग सिस्टम है जो दुनिया भर में, यानी अब कह सकते हैं कि इतना छा गया है कि उससे निकलना बहुत मुश्किल होता है, वो ये है कि आपने जाके लोन ले लिया किसी भी काम के लिए, घर बनाना है, गाड़ी खरीदनी है, कुछ भी करना है, फाइनेंसिंग अपने गाड़ी की अपने घर की आपने कर ली, लेकिन होता है फिर कि आप बचत नहीं कर पा रहे हैं या आपकी आमदनी फिर उतनी है नहीं, इसमें सबसे इसके फ़वाद क्या हैं बैंक से कर्ज़ा लेने में और नुकसान क्या हैं?
देखिए, बैंक से कर्ज़ा लेने से पहले भी आपको ये ज़रूर सोचना चाहिए कि आप उसको कैसे रीपे कर सकेंगे, और बैंक को भी कर्ज़ा देने से पहले आपकी कैपेबिलिटी टू रीपे को अंडरस्टैंड करना चाहिए, आप उसको डिमॉन्स्ट्रेट करें इधर थ्रू योर कंटिन्यूड अर्निंग कि आपकी बाकायदा माहाना आमदनी इतनी ज़्यादा है कि अगर आप कार जो है किस्त पे ले लेंगे तो आप उसको पे कर देंगे,
जी
आपकी तनख्वाह से पैसे कट के पे हो जाएंगे, ठीक है, तो आप उसी हिसाब से। लेकिन अगर आप एक बहुत बड़ा विल्ला और उसमें आप हाथ डाल देते हैं कि जी आपके पास डाउन पेमेंट के तो पैसे हैं, बाद में पता चला उसकी जो अकसात हैं, जो किस्तें हैं, इंस्टॉलमेंट हैं, वो आप पे ही नहीं कर पा रहे, तो फिर क्या होगा, बैंक वो रिपोजेस कर लेगा।
जी
वो जो मकान आप बैंक से किस्त पर लेते हैं उसका ये होता है कि टाइटल जो है वो जब भी ट्रांसफ़र होता है जब आपके सब्सटेंशियल पेमेंट कर देते हैं,
जी
वो इनफैक्ट बैंक ही उसका ओनर होता है, यानी ये सिचुएशन होती है, और या उसमें रीपोजेस करने की ऐसी क्लॉजेज होती हैं। तो आप ये ना समझें कि जी अगर आपके पास 100 रुपये की चीज़ है और 500 का आपने कर्ज़ा ले लिया है तो आप 500 के मालिक तो नहीं बन सके, तो ये सिचुएशन को आप अंडरस्टैंड करें। और ज़्यादातर समझदार लोग वही होते हैं जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं, आगे तक का फार साइटेड होते हैं, जिनकी दूरअंदेश अप्रोच होती है।
तो इसमें करना क्या चाहिए? हमारी मजबूरी है, हम किसी भी चीज़ के लिए, जैसे मैंने मुझे गाड़ी खरीदनी है, मुझे घर खरीदना है, तो कर्ज़ा हमें लेना ज़रूरी है, क्या करना चाहिए मुझे?
देखें, अगर आपने गाड़ी ख़रीदनी है, घर ख़रीदना है, सबसे पहले तो आपको ये सोचना चाहिए कि भाई किस साइज़ का घर ख़रीदना है जो कि आप अफोर्ड कर सकते हैं, किस साइज़ की आप गाड़ी अफोर्ड कर सकते हैं, और आपकी अपनी अर्निंग जो है उसको डेमोस्ट्रेट करें कि इस अर्निंग से मैं इस गाड़ी की किस्त, तो संबंध गाड़ी की तो किस्त मैं पे कर सकता हूँ लेकिन BMW की या मर्सिडीज़ की किस्त तो मैं नहीं पे कर सकता। तो आप अगेन वही बात आई, जितनी चादर हो उतने पैर फैलाइए आप।
तो सबसे पहला कदम हो गया ये। अब हमने मिसाल के तौर पर हमने देख लिया कि हमारे पास इतना, यानी बिल्कुल मामूली किस्म का एक हमें घर ख़रीदना है, एक बहुत ही मुतवस्सित बल्कि गरीब इलाके में, मिसाल के तौर पर मैं कह रहा हूँ, और वहाँ पर हमने ये घर हमने ख़रीद लिया है, अब बैंक को हमें लोन देना है और यानी उसके जो पेमेंट का सिलसिला होता है वो हमें शुरू करना है, और मिसाल के तौर पर बैंक ने भी दे दिया, बैंक मुश्किल से लोन कहाँ देते हैं आजकल, तो आपने ये कर लिया, तो इसमें अब एक तो किन चीज़ों का हमें ख्याल रखना होगा शुरू?
देखिए, बैंक जो है वो बेसिकली कमर्शियल कंसिडरेशन पे चलता है,
जी
ठीक है, तो बैंक से कर्ज़ लेने से पहले भी आपको सिर्फ यही नहीं देखना है कि आप पे कर सकेंगे, आपने देखना है किस बैंक से कर्ज़ लेना है, बैंक के मस्कन की अगर इकसात और आप ज़्यादा फेवरेबल हैं तो आप बैंक के मस्कन से लें, प्राइवेट बैंक की अगर नहीं है
हाउसिंग
तो उसे
यानी
ना
जो
लें।
बैंक्स
तो
होते
आपको
हैं।
ये देखना पड़ेगा कि किससे कर्ज़ लेना है, किस कंडीशंस पर लेना है, ठीक है,
जी
और ये तो कर्ज़ लेने के बाद है। फिर उसके बाद ये बहुत बड़ा मेजर डिसीजन है आपकी लाइफ का कि जनाब कर्ज़ लेकर घर बनाना, तो अगर आपने ये लेना है तो फिर आपकी जो लाइफ है बड़ी इकोनोमाइज होनी चाहिए, आप जो है सेविंग करें, क्योंकि घर का बनाना कुछ लोगों का, मैं अगर आपकी जगह हूँ शायद मैं कर्ज़ लेना पसंद ना करूँ और मैं किराए के घर में रहना पसंद करूँ, लेकिन अगर आप घर लेकर अपने मिल्कियत बना के रहना पसंद करते हैं तो फिर आप अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को थोड़ा सा कम करें। देखिए ना, यू कांट अचीव एवरीथिंग, अगर मेरी और आपकी तनख्वाह मोर और लेस एक एक कंपेरेबल अमाउंट है,
जी
और मैं समझता हूँ कि मैं क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर गुजारना चाहता हूँ, आई वुड प्रेफर टू कीप ए गुड कार, ठीक है ना, और अच्छी एरिया में लेना चाहता हूँ, लेकिन आप कहते नहीं मेरा घर हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, तो ये आपकी दूसरी अप्रोच है। दोनों में से कोई अप्रोच गैर इस्लामी तो है नहीं
जी,
तो आप जो है उस हिसाब से क्वालिटी ऑफ लाइफ को अपने थोड़ा कम करें।
अच्छा, इसमें खुद इसमें क्वालिटी ऑफ लाइफ के उसमें ये घर का मसला आ जाता है, गाड़ी का आ जाता है, बहुत सारे खर्चे आ जाते हैं हम लोगों के बच्चों के होते हैं आजकल, ये मुख्तलिफ गैजेट्स हैं, हर रोज़ एक नया मॉडल आ जाता है और आदमी काफ़ी हद तक वसवसा उसको हो जाता है कि ज़रूर ख़रीद ले। तो इसमें एक चीज़ बहुत ही अहम होती है, वो ये है कि हम लोग जितनी, जैसा कि शुरू में कहा कि जितनी आमदनी है उतनी ही उतना ही हम अपना पाँव फैलाएँ, तो इसमें अंदाज़ा हम लोग कैसे लगाएँ कि भाई ये जो हमारे पास पैसा आया है ये महीने के आखिर तक चलेगा।
देखें, इसमें मोटी मोटी बात है, आप घर की ये देख लेंगे, घर अगर आप कैश पर लेते तो कितने पे होता, अगर 100 मिलियन पे कैश पर है तो आप अगर किस्तों पे ले रहे हैं तो वो क्या 150 पे है या 200 पर है, तो इसमें जो इंटरेस्ट का जो एलिमेंट है वो कितना ज़्यादा है, तो ये सब चीज़ें, ये मोटी मोटी चीज़ें हैं, कॉस्ट प्राइस है उसकी, यानी कैश प्राइस है, और उसकी जो है इंस्टॉलमेंट प्राइस क्या है, ठीक है ना, और आपकी अपनी अर्निंग क्या है, तो ये 2-3 चीज़ें मोटी मोटी इनको आपको रिलेट करना पड़ेगा, या रीपेमेंट शेड्यूल क्या है, यानी किस्तें जो हैं उसकी माहाना या सालाना कितनी किस्तें आपको देनी होंगी, तो ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। अगर आप एक कैलकुलेटर लेके तरीके से बैठें या कोई मेरे जैसा आपको पढ़ा लिखा मिल जाए उससे 2-4 हिसाब किताब कर लें तो आप वर्कआउट कर लेंगे, ये तो ओवरसाइज डीलिंग में कर रहा हूँ, ये जो 500 मिलियन का मैं डील कर रहा हूँ ये तो ठीक नहीं है, मुझे तो कोई 400 मिलियन का लेना चाहिए या 300 मिलियन का लेना चाहिए। तो इसमें मोटे मोटे एलिमेंट यही हैं, कैश प्राइस है, उसकी इंस्टॉलमेंट प्राइस है, रीपेमेंट इंस्टॉलमेंट्स हैं, और पीरियड ऑफ लोन है, तो ये छोटे छोटे एलिमेंट होते हैं इसके।
अच्छा अथर साहब, एक चीज़ जो मैं पूछना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा अहम है, आपने ख़ुद भी उसकी तरफ इशारा किया कि किस बैंक से हम लोग ले रहे हैं, फ़र्क क्या है, बैंक तो बैंक होते हैं और बहुत ही खूबसूरत भी, आजकल डेकोरेशन भी बहुत ज़बरदस्त है, जिसमें ज़्यादा बेहतर डेकोरेशन हो उसके यहाँ जाए, या वाकई कोई ख़ास इसमें क्वालिटी है, इसमें एक मिनट में अगर आप बता सकें जल्द तो बहुत।
देखिए, अब ऐसा है कि ईरान में शुरू में तो चंद एक बैंक थी जो गवर्नमेंट बैंक थी, बैंक की तजारत था, बैंक की मिली था, बैंक की मस्कन था, ठीक है ना। अब ईरान में भी काफ़ी ज़्यादा प्राइवेटाइज बैंक हो चुके हैं, प्राइवेट बैंक, जिसमें बैंक के पासर गार्ड भी है, बैंक के पारसियान भी है, तो इन तमाम बैंकों की टर्म्स एंड कंडीशंस को आप अंडरस्टैंड करके फिर आप अपना डिसीजन लें, और ये चीज़ इतनी ज़्यादा यानी रैपिडली रिव्यू होती है क्योंकि ईरान इज़ ए हाइपर इन्फ्लेशनरी इकोनॉमी है, सम और द अदर यानी ईरानी करेंसी ऊपर नीचे वो काफ़ी वॉलेटाइल हो रही है, तो इट वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन टू कंसिडर दीज फैक्टर्स। लेकिन ईरान में ये है कि इट इज़ बेटर टू हैव हाउस, इट इज़ बेटर टू हैव कमोडिटीज़, क्योंकि करेंसी का यू डोंट नो कब डी वैल्यू हो जाए, कुछ हो जाए, तो ईरान में आप गुड्स में सेव करना बेहतर है।
अच्छा, तो इसमें इंशाल्लाह इसके बारे में इंशाल्लाह हम लोग मज़ीद गुफ्तगू करेंगे, और क्योंकि हम लोग के अच्छे खासे देखने वाले हिंदुस्तान और पाकिस्तान से उनका ताल्लुक है, और आप बहरहाल उस बरसगीर के बारे में भी आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्रामों में आपको ज़हमत देंगे। इस वक्त हम लोग के पास वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया, बहुत तेज़ी से गुजरता है खुर्रम,
बिल्कुल
तो इसमें जो है मैं यानी फौरन ख़त्म भी हो जाता है
इंशाल्लाह, जो है हम अगले हफ्ते भी,
हाँ इंशाल्लाह, इसमें कई सवाल हमारे जहन में आए हैं इसी सिलसिले में, लोन है यानी जो हर रोज़ाना जो मुश्किलात पेश आ रही है लोगों को, लोन के सिलसिले में किस बैंक का इंतखाब करें, क्या रास्ता अपनाएं, इस्लामिक बैंकिंग, इस तमाम चीज़ें इंशाल्लाह अथर साहब, अथर जैदी साहब हम आपको जहमत देंगे अगले प्रोग्रामों में भी, और बस आखिर हम लोग प्रोग्राम भी अपने इख्तिताम पे पहुंच
जी, बिल्कुल प्रोग्राम जो है हमारा बिल्कुल आखिरी लम्हात में पहुंच चुका है, और सिर्फ ये बताते चलूं कि कल जो है हमारी मेहमान होंगी डॉक्टर अनम ज़ाहरा, और जैसे कि आप लोगों को पता है इतवार के दिन जो है हम बच्चों की बीमारियों पर बात करते हैं, तो इंशाल्लाह इतवार के दिन जो है डॉक्टर अनम ज़ाहरा हमारे साथ स्टूडियो में होंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे हसन जैदी और अतर